कायाधिक का निरोध होने पर, उसको रोकने पर, उसके निमित्त भूत कर्म का आश्रय रुक जाता है, संवर की सिद्धि होती है। यानी एक जगह एक स्थिर होकर के अगर गुप्ती का पालन नहीं कर सकते, अब गुप्ती के पालन में ये विषय सुख की अभिलाषा की प्रवृत्ति का निषेध कर दिया सम्यक के द्वारा, और अंदर अगर धर्म ध्यान आदि चिंतन कर रहे हैं तो फिर गुप्ती में बाधा नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर प्रवृत्ति कर रहे हैं तो प्रवृत्ति करते समय ये पांच प्रकार की प्रवृत्ति होती है किसी भी मनुष्य के द्वारा। ईरिया माने चलना फिरना होता है, भाषा यानी बोलना होता है, आदान निक्षेपण यानी उठाना रखना होता है, और उत्सर्ग यानी मलमूत्र का विसर्जन होता है। एषणा बीच में एक शब्द आया था, उसका अर्थ होता है भोजन ग्रहण करना होता है। तो इन पांच प्रकार की प्रवृत्तियों में सावधानी कैसे रखें, मतलब इन पांच प्रवृत्तियों के अतिरिक्त अगर कोई प्रवृत्ति करेंगे तो फिर उसको गुप्ती में लिया जा सकता है। यानी गुप्ती सर्वथा निवृत्त्यात्मक हो ऐसा नियम नहीं रहा। अब स्वाध्याय कर रहे, अब स्वाध्याय में तो ये पांच समितियां नहीं है, लेकिन स्वाध्याय को गुप्ती में कथनचित रखा जा सकता है। अब गुप्ती के दो भंग बनाए इसमें मूलाचार प्रदीप में, एक प्रवृत्त्यात्मक गुप्ती और दूसरी निवृत्त्यात्मक। नहीं, भाषा समिति तो वार्तालाप के काल में, स्वाध्याय अकेले बैठ करके पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें क्या करोगे, उसमें तो पांचों समितियों का अभाव है। तो तत्राशक्तस्य मुनीर निर्वध्य प्रवृत्ति ख्यापनार्थम आह, उन गुप्तियों में अशक्त जो मुनि है, असमर्थ जो मुनि है, उनकी निर्दोष प्रवृत्ति प्रकट करते हुए या प्रकट करने के लिए आह अगला सूत्र कहते हैं, ईरिया भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्ग समित है सम्यक इति अनुवर्तते। सम्यक इसका अनुवर्तन चला आ रहा है, यानी सम्यक ईरिया, सम्यक भाषा, सम्यक ऐषणा, सम्यक आदान, सम्यक निक्षेप और सम्यक उत्सर्ग, सबके साथ सम्यक लगा लेना। तीन ईरियादयो विशेष्यन्ते, उस सम्यक शब्द के साथ ईरियादिक विशेषित हो जाते हैं, सम्यक ईरिया, सम्यक भाषा, सम्यक ऐषणा, सम्यक आदान निक्षेप, सम्यक उत्सर्ग इति। ता एता पंच समितयो, वे जो ये पांच समितियां हैं, विदित जीवस्थान आदि विधेर मुने, जिन्होंने जीवस्थान आदि की विधि को विदित कर लिया है, जान पहचान लिया है, ऐसे मुनि के प्राणी पीड़ा परिहारा अभ्युपाया वेदितव्या, प्राणी पीड़ा के परिहार के अभ्युपाय रूप में जाननी चाहिए। माने प्राणियों को पीड़ा न हो उसका उपाय क्या है, पांच समितियां। जीवस्थान आदि की विधि मतलब ये है कि कहां पर कौन से नव योनियां जो रहती है, विधि यानी भेद है। माने कौन से स्थान पर पैर रखने पर जीवों को बाधा हो सकती है, भले घास ना हो, लेकिन घास ना होते हुए भी कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं कि जहां पर जीवों को बाधा होगी। चींटियां ना हो, लेकिन फिर भी चींटियों को ही मात्र बचाना थोड़ी है मुनि का कर्तव्य, सभी प्रकार के जीवों की रक्षा करनी पड़ती। तो जीव स्थान जान लेने से सब पता चल जाता है कि कौन से स्थानों पर जीवों की संभावना है। फिर तत्र प्रवर्तमानस्य, उन समितियों में प्रवृत्ति करने वाले मुनि के असंयम परिणाम निमित्त कर्माश्रवात संवरो भवति, असंयम परिणामों के निमित्त से होने वाले कर्माश्रव से संवर हो जाता है, उससे उनका बचाव हो जाता है। तृतीय से संवर हेतु और धर्म से भेद प्रतिपद्य अर्थमाह, तीसरा जो संवर हेतु है क्या है, धर्म, उसके भेद की प्रतिपत्ति अर्थात जानकारी के लिए आह सूत्र कहते हैं, उत्तम क्षमा मार्दवार्जव, शौच सत्य संयम, तपस्यागा किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्मः। किमर्थम इदम उच्यते, ये सूत्र क्यों कहते हो, शंकाकार भी शंका करते रहते हैं बीच बीच में,
ये सूत्र क्यों कह रहे हो?
आद्यम प्रवृत्ति निग्रहार्थम तत्रा समर्थानाम प्रवृत्ति उपाय प्रदर्शनार्थम द्वितीयम इदम पुनः। बोले कि पहला जो सूत्र था संवर हेतुओं में, वो गुप्ति था, उसमें प्रवृत्ति का निग्रह करने के लिए संवर का हेतु दिया था। फिर प्रवृत्ति का निग्रह करने में तत्र असमर्थानाम, जो समर्थ नहीं है उनके लिए प्रवृत्ति का उपाय प्रदर्शित करने के लिए दूसरा सूत्र दिया, समितियों के द्वारा प्रवृत्ति करो। इदम पुनः, और यह सूत्र दशविध धर्मोख्यानम, इसमें दस प्रकार के धर्म का जो कथन है वो समितिषु प्रवर्तमानस, समिति में प्रवृत्ति करने वाले मुनि के प्रमाद परिहारार्थम वेदितव्यम, प्रमाद का निषेध करने के लिए जानना। अब दस धर्म पर कितनी व्याख्याएं हो जाती है, क्षमा के ऊपर दुनिया भर के सुविचार और सारी बातें कहते हैं, ठीक है वो एक हिसाब से ठीक है, लेकिन यहां पर उसका उद्देश्य क्या है दस धर्मों का? कि समितियों में प्रमाद ना हो, मात्र इतना उद्देश्य। मुनियों का जब समिति रूप प्रवर्तन होता है तो उस समिति की प्रवृत्ति में प्रमाद न हो जाए, इसलिए दस धर्म है, इतना उसका मात्र उद्देश्य। कैसा? तो देखिए, शरीर स्थित हेतु मार्गणार्थम पर कुलान्युपगच्छतु भिक्षुर, शरीर की स्थिति के हेतु की मार्गणा करने के लिए, शरीर की स्थिति का हेतु आहार है और आहार की मार्गणा का अर्थ होता है आहार की खोज, तो आहार की खोज के लिए साधु कब निकलते हैं, कैसे निकलते हैं? तो अपनी उचित वेला में भिक्षाचर्या से निकलते हैं। अब वो कहां मिलता है उनको आहार? जहां नवदा भक्ति होती है। तो पर कुलानि उपगच्छतु, दूसरों के घरों में जाते हुए वे भिक्षु दुष्ट जना क्रोश प्रहसन आवज्ञा ताड़न शरीर व्यापादन आदि नाम सन्निधाने, उनको कई प्रकार की स्थितियां हो सकती है। आहार के लिए साधु निकले हैं तो दुष्ट जन आक्रोश कर सकते हैं, उल्टा सीधा बोल सकते हैं, प्रहसन उनकी हंसी उड़ा सकते हैं, अवज्ञा उनका अनादर कर सकते हैं, ताड़न उनको मार पीट सकते हैं, और शरीर व्यापादन माने उनके शरीर को ही नष्ट कर सकते हैं, और आदि शब्द से और भी कुछ कर सकते हैं। तो इन सब निमित्तों का सन्निधाने, सन्निधान होने पर भी कालुष्यानुत्पत्ति क्षमा, मन में क्रोध रूप कलुषता की उत्पत्ति का न होना क्षमा है। पर कुलानी ने, ऐसा अच्छा बुरा कुछ नहीं है पर कुलानी। अब इसका अर्थ अगर ऐसा लग कुल का अर्थ कुल ले ले तो पर कुल का अर्थ होता है अच्छे कुल, पर यानी अच्छा उत्कृष्ट, लेकिन पर कुलानी का अर्थ तो श्रावक कुल शेरडालाम श्रावक कुल लिया उन्होंने। पर कुलों में जाते हुए हो सकता है इसके शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ होते हैं। वो तो फिर भिक्षा विधि में ईर्ष्णा समिति में आ जाता, वो ईर्ष्णा समिति में कहां आहार लेना कैसा नहीं लेना वो सब उसमें आ जाता। यहां तो क्या है कि वहां जाते समय रास्ते में जो दुष्ट लोग उपद्रव कर रहे हैं तो उसमें भी अंदर क्रोध की उत्पत्ति न होना क्षमा है। जात्यादि मदावेशाद अभिमाना भाव मार्दम, जाति आदि के मद के आवेश से अभिमान का न होना मार्दव है। मान निर्हरणम, मान का हरण हो जाना। योगस्यावक्रता आर्जव, योगों की अकुटिलता आर्जव है। मन वचन काय में निश्चलता सरलता आर्जव। फिर प्रकर्ष प्राप लोभाद निवृत्ति शौचम, लोभ की वो निवृत्ति जो प्रकर्षता को प्राप्त हो गई है उसका नाम शौच है। फिर सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम सत्यमिति उच्यते, सज्जनों के बीच प्रशस्त लोगों के बीच साधु वचनम सुंदर वचन बोलना सत्य कहा जाता है। ननु चैतत भाषा समिताव अंतर्भवती। फिर शंकाकार की शंका आ गई कि यह तो भाषा समिति में अंतर्भूत हो गया, नहीं से दोष। आचार्य कहते हैं कि नहीं, ये दोष नहीं है। समितौ प्रवर्तमानो मुनि, समिति में प्रवृत्ति करने वाले मुनि साधुषु असाधुषु च भाषा व्यवहारम कुर्वन्, साधुओं में भी और फिर असज्जन में भी भाषा संबंधी व्यवहार करने वाले होते हैं। हितम मितं च ब्रूयात, और हितकारी और सीमित बोलते हैं। अन्यथा, अन्यथा क्या होता है, रागा अनर्थ दंड दोष, राग हो जाएगा ज्यादा बोलेंगे तो, और फिर अनर्थ दंड का भी दोष लोगे व्यर्थ बोलेंगे तो। स्यात् इति वाक् समिति रित्यर्थ, ये वचन समिति होगी, भाषा समिति होगी। लेकिन इह पुनः, इस सत्य धर्म में क्या है, संतः प्रव्रजितास, संत यानी जो दीक्षित है, साधु है, एलक्षुलक भी ले सकते हैं, आरिका भी ले सकते हैं, और तद्भक्तावा, और उनके भक्त भी हो सकते हैं। तेषु साधु वचनम, उनके प्रति साधु वचन बोलना सत्यम। कैसा बोलेंगे, ज्ञान दर्शन चारित्र शिक्षण आदि, ज्ञान चारित्र आदि की शिक्षा है आदि, बहुवपी बहुवपी, ज्यादा भी बोले वो कर्तव्यम, उनका कर्तव्य है कि ज्यादा बोल करके भी उनको वो बात समझा दे साधुओं को या फिर उनके भक्तों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भाषा समिति में तो हम कम बोलते हैं, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में आ जाए इसलिए हमें ज्यादा बोलना पड़ रहा है। अंदर अभिप्राय ये रख सकते हैं, फिर बता भी सकते हैं उनको ताकि वो और जल्दी समझ जाए कि भाई इनको क्यों ज्यादा बोलवाए महाराज को, समझ सकते। तो ज्यादा भी बोलना उनका कर्तव्य होता है, इति अनुज्ञायते, इसलिए ये हो सकते हैं, हो सकते हैं। आचार्य श्री कई बार समझाते हैं शिष्यों को, तो उस समय कुछ वाक्य उनके तेज भी होते हैं, तो वो भी सत्य धर्म है क्योंकि वो हितकारी है। और धर्मोपबृंहणार्थम, धर्म की उपबृंहण करने के लिए, वृद्धि करने के लिए करते हैं, तो ये सत्य धर्म हो गया। फिर समितिषु वर्तमान से प्राणींद्रिय परिहार संयम, समितियों में प्रवृत्ति करने वालों का जो प्राणी और इंद्रियों का त्याग है, यानी प्राणी हिंसा का त्याग और इंद्रिय विषयों का त्याग, वो संयम कहलाता है। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है उसको तप कहते हैं। तद उत्तरत्र वक्षमाणम द्वादश विकल्प मवसेयम, वो आगे कहे जाने वाले 12 भेदों वाला जान लेना चाहिए। अब इसमें इच्छा निरोध तप नहीं आया कहीं भी, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, ये सर्वार्थ सिद्धि की परिभाषा में यह है। संयतस्य योग्यम ज्ञानादिदानम त्याग, संयमी के योग्य जो ज्ञानादिक का दान होता है वो त्याग कहलाता है। यानी त्याग धर्म में साधु क्या करते हैं, वो जो कुछ दे सकते हैं दूसरों को, ज्ञानादिक जो प्रदान करते हैं, दीक्षा है, प्रायश्चित है, ज्ञान है, उपदेश है, ये सब साधु का त्याग धर्म है। और इसलिए साधु के इस त्याग धर्म की महिमा इतनी अपार है कि इससे जगत का कल्याण होता है। निथारयन्ति लोगम, आचार्य कुनकुन स्वामी ने कहा कि वो संसार को पार लगा देते, इतना बड़ा उपकार होता है साधु, वो भी त्याग धर्म। संयतस्य जो उनके देने योग्य है, माने साधु जो चीज दे सकते हैं, जो उनके योग्य है उसको दे दे, तो वो त्याग धर्म है। त्याग का अर्थ नमक आदि का त्याग नहीं, वो तो रस परित्याग नाम के तप में आएगा, वो तप धर्म में आता है। यहां त्याग धर्म में क्या आता है, ज्ञानादिक देना, वो त्याग धर्म। क्या नहीं, तप तो नहीं है वो तो दान कहलाएगा। 4 प्रकार के दान में आ जाएगा वो, गृहस्थ की दान और पूजा जो मुख्य धर्म है, उसके अंतर्गत दान धर्म में वो जो कुछ भी देगा वो सम्मिलित हो जाएगा। गृहस्थ का दान कहलाएगा। वैसे तो पहले भी आ चुका है त्यागो दानम, त्याग किसको कहते हैं, दान को, पहले भी आ चुका है। 16 कारण भावनाओं में देखा था अपन ने, आप नहीं थे, 24वां सूत्र को 6ठे अध्याय का।
क्या लिखा है, त्यागो दानम, मिल गया छठे अध्याय के 24वें सूत्र में, तत्त्रिविधम आहार दानम अभय दानम ज्ञान दानम चेति, इसके पृष्ठ अलग है, छठे अध्याय का 24वां सूत्र है, वो ऊपर लिखा होगा कोने में, त्यागो दानम तत्त्रिविधम आहार दानम अभय दानम ज्ञान दानम चेति, ठीक है। उपात्तेष्वपि शरीरादिषु संस्कार आपो रपोहाय, उपात्तेष्वपि शरीरादिषु संस्कार आपोहाय ममेदम इत्यभि संधि निवृत्ति राकिंचन्यम, स्वीकार किए हुए अपने शरीरादिक के प्रति भी संस्कार आपोहाय, सजावट आदि का अपोहन करने के लिए, निराकरण करने के लिए, मन शरीर से भी थोड़ा राग न रह जाए, इसलिए ममेदम इति अभिसंधि निवृत्ति, ये शरीर मेरा है इस भावना को ही छोड़ दिया, इसका नाम है आकिंचन्य, कुछ भी नहीं है मेरा, नास्य किंचनास्तीति अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं है उसको अकिंचन कहते हैं, तस्य भाव उसकी भावना कर्म वा उसकी चेष्टा भी आकिंचन्यम अकिंचन्य। अनुभूत आंगना स्मरण कथा श्रवण त्रि संसक्त शयनासन आदि वर्जनात् ब्रह्मचर्यम परिपूर्णम अवतिष्ठते, भोगी हुई अंगना का स्मरण, उनके उनकी कथा करना, चर्चा करना, उनका उनकी कथाओं का श्रवण करना, और स्त्री संसक्त, स्त्री संसक्त का अर्थ होता है स्त्रियों द्वारा, जब संसक्त का अर्थ होता है उस प्रकार की काम चेष्टाएं जहां पर की जाती है, ऐसी शयन यानि पलंग वगैरह हैं, आसन यानि बैठने के स्थान आदि हैं, जैसे पार्क में कुछ ऐसे स्थान रहते हैं जहां पर इस प्रकार की चेष्टाएं होती है कई बार लोगों के द्वारा, तो उनका वर्जनात् साधु उस पर नहीं बैठेंगे जहां पर इस प्रकार से लोग चेष्टाएं करते हैं, उस पर साधु नहीं जाएंगे, उसका वर्जनात् उसका त्याग रखेंगे। तो इससे क्या होता है कि ब्रह्मचर्य परिपूर्ण अवतिष्ठते, ब्रह्मचर्य परिपूर्ण बना रहता है, क्योंकि जहां पर इस प्रकार की प्रवृत्तियां होती है वहां पर वैसी तरंगे हो जाती है, आज की भाषा में अपन देखिए एनर्जी की भाषा आज की शोध के अनुसार, तो उस प्रकार की तरंगे और उस प्रकार का वो प्रदूषण आ जाता है वहां पर, तो उसका भी साधु को त्याग रखना चाहिए। तो इससे ब्रह्मचर्य परिपूर्ण रहता है, क्योंकि वहां बैठने पर कभी क्या होता है कि अनजाने में अपने आप वैसे तरंगे आ जाती है, अपन देखो पवित्र स्थान पर जाओ, जैसे परशुराम की कथा आई थी ना उसमें श्रवण कुमार वाली, दक्षिण भारत की कथा क्या थी वो, उत्तर भारत की कथा में तो बस वो कांवली लेकर के जाता है माता पिता को लेकर, प्यासा पानी लेने जाता है और वहां पर दुर्घटना होती, लेकिन दक्षिण की कथा में क्या था कि परशुराम ने जहां अपनी माँ को मारा था, तो फिर वहां पर इसके भी भाव बिगड़ गए, ये भी अपनी माँ को छोड़ करके जाने लगा, फिर माँ ने बोला कि उस नदी के पार उतार देना, तो फिर वहां जाकर चरण पकड़ के रोने लग गया। तो क्षेत्र का भी प्रभाव होता है, स्थान का प्रभाव होता है, इसलिए ब्रह्मचर्य को परिपूर्ण अवस्थित रखने के लिए साधु को उन स्थानों का त्याग कर देना चाहिए जो स्त्री संसक्त, ये संसक्त शब्द बड़े महत्व का है। अब देखिए जहां पर कभी कोई ऐसा स्थान है, कोई पाटा है, इस पाटे पर अगर कोई आरिका माता जी बैठी थी और मान लो उठ करके चली गई, विहार हो गया उनका, और अब आकर के अगर कोई मुनि महाराज बैठ गए तो उनके ब्रह्मचर्य में कोई दोष नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के मन में कि जिस आसन पर माता जी बैठी उस आसन पर अगर साधु बैठ गए तो फिर गया काम से, उनका सब संयम नष्ट हो गया। स्त्री संसक्त शब्द पर ध्यान दीजिए आप। देखो संस्कृत भाषा न आने का दुष्परिणाम यह होता है कई बार कि भाषा का ज्ञान न होने से व्यक्ति उसका कुछ अर्थ का अनर्थ लगा देता है। संसक्त का अर्थ क्या होता है? द्रव्य संग्रह में इसका और खुलासा मिल जाएगा। है क्या द्रव्य संग्रह भी यहां पर? बृहत द्रव्य संग्रह नहीं तो अगली बार देख लेना अपन, है ना। द्रव्य संग्रह ले आना कोई कहीं से भी जिसके पास हो तो, मिल जाए तो फिर ले आना, उसमें अपन और देख लेंगे इसको। और स्वातंत्र वृत्ति निवृत्त्यर्थो वा गुरुकुल वासो ब्रह्मचर्यम, अथवा स्वच्छंद प्रवृत्ति से बचने के लिए गुरु के संग में निवास करना ब्रह्मचर्य है। तो क्या हो गया कि गुरु के संग को छोड़कर आप अगर स्वच्छंद हो गए तो वहां पर तो कोई रोक टोक है नहीं। श्रावक लोग तो हाथ जोड़कर आहार देते हैं और बाकी 24 घंटे तो कौन देख रेख करता है, कौन छानबीन करता है कि साधु क्या कर रहे हैं। तो वहां जाकर के अगर साधु स्वच्छंद हो जाए तो फिर ब्रह्मचर्य उनका दूषित हो सकता है। इसलिए स्वतंत्र वृत्ति की निवृत्ति के लिए गुरुकुल में निवास करना माने गुरु के संग में निवास करना वो ब्रह्मचर्य है। और गुरुकुल का अर्थ ये भी होता है, इसमें आया था पहले वैयावृत्ति के प्रकरण में आया था ना, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में निकला था, अभी इसमें भी आगे आने वाला है। तप के भेदों में दिए हैं, वो तो ठीक है ना। गुरुकुल का अर्थ यहां पर दिया है दीक्षक आचार्य शिष्य संस्थाय कुलम, अपने दीक्षित आचार्य के द्वारा दीक्षित जो दूसरे शिष्य हैं उनके साथ रहना, इसको भी कुल कहा है। लेकिन गुरु कुल का अर्थ क्या होता है कि गुरु के साथ जो दीक्षित शिष्य हैं उन्हीं में रहना, यानी गुरु के संग में रहना, इससे भी ब्रह्मचर्य की स्थिरता रहती है। दृष्ट प्रयोजन परिवर्जनार्थम उत्तम विशेषणम, लौकिक प्रयोजन का निषेध करने के लिए इन सब के आगे एक उत्तम शब्द दिए है, उत्तम क्षमा उत्तम मार्दवादी। तान्यवम भाव्यमानानी, इस प्रकार से भावित किए जाने वाले ये 10 धर्म, धर्म व्यपदेश भांजी, धर्म इस संज्ञा को प्राप्त होते हुए स्वगुण प्रतिपक्ष दोष सद्भावना प्रति प्रणिहितानि, अपने गुणों के प्रतिपक्ष भूत जो दोष होते हैं उनके सद्भावना प्रणिहितानि, क्या अर्थ होगा इस वाक्य का? स्वगुण और प्रतिपक्ष दोष, स्वगुण के प्रति सद्भावना और प्रतिपक्ष दोष में अप्रणिहित रहना, ये और भी अर्थ हो सकता है इसका कुछ। पंडित जी ने तो कुछ भावार्थ जैसा निकाले, ये जो 10 धर्म है ये अपने गुणों में सद्भावना को प्राप्त करने पर और प्रतिपक्ष दोषों में, प्रणिहित का अर्थ होता है ध्यान लगाना, ऐसा भी हो सकता है इसका भाव कि अपने गुण और प्रतिपक्षी दोष इनका ख्याल रहता है और ख्याल रहने के कारण भावना जो होती है वो गुणों की रहती है और दोषों से बचने का पुरुषार्थ होता है। तो संवर कारणानि भवन्ति, ये संवर के कारण बन जाते हैं। इस प्रकार जीवन में उतारे गए और स्वगुण तथा प्रतिपक्ष भूत दोषों के सद्भाव में यह लाभ है और यह हानि है। हानि शब्द ऊपर नहीं निकल रहा ना, हानि शब्द ऊपर नहीं आ रहा, इसीलिए हम थोड़ा अटक रहे थे। इस तरह की भावना से प्राप्त हुए ये धर्म संज्ञा वाले उत्तम क्षमादिक संवर के कारण होते हैं। इसके आगे 12 भावना और 22 परिशेष है। ये इतना सुंदर प्रकरण है कि हम जब भी इसको पढ़ते हैं तो 3 दिन तक के तो इसका असर, कम से कम 3 दिन तक तो ये बने रहते हैं।